एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक जापानी शब्द की जिसने दुनिया भर में काफी धूम मचाई है, इकिगाई।
हाँ, इकिगाई।
और हम खास तौर पर उस किताब पर बात करेंगे जिसने इसे इतना पॉपुलर बनाया, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ।
नमस्कार जी, ये किताब हेक्टर गार्सिया पुएग्जर्वर और फ्रांसिस्क मिरालिस ने लिखी है। और देखिए, आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना,
हाँ,
उसमें बहुत से लोग मतलब एक तरह से अपने काम में, अपनी जिंदगी में एक गहरे मतलब की तलाश में है, एक उद्देश्य ढूंढ रहे हैं।
बिल्कुल, ये सवाल तो जैसे सबके मन में है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारा रोल क्या है इसमें।
सही बात है, लगता है जैसे हर कोई अपनी जगह अपना वो रोल ढूंढ रहा है।
और ये किताब इसी तलाश में हमें ले जाती है जापान के ओकिनावा द्वीप पर। कमाल की जगह है, कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग वहीं रहते हैं।
हाँ, 100 साल से ज्यादा जीने वाले।
सोचिए तो आखिर उनकी इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। लेखक कहते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा है यही इकिगाई।
मतलब सुबह उठने की वजह, या कह लें जीवन का उद्देश्य।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ लंबा जीना नहीं है बल्कि उस जीने को एक मकसद देना है, अपना रोल समझना है।
और पता है, ये जो हमारी वेस्टर्न सोच है ना, रिटायरमेंट वाली, या काम और जिंदगी को बिल्कुल अलग अलग रखने वाली, उसको भी एक तरह से चैलेंज करती है।
अच्छा, कैसे?
ये बताती है कि कैसे जिंदगी भर अपने मकसद, अपनी गोल से जुड़े रहकर ज्यादा संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है।
तो चलिए आज इसी इकिगाई की बुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं।
हाँ, समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी में क्या मायने रख सकता है। तो पहले जरा लेखकों को जान लें, ये भी दिलचस्प कहानी है। हाँ बिल्कुल, तो एक है हेक्टर गार्सिया पुएग्जर्वर, ये स्पेन के हैं, वैसे तो इंजीनियर हैं।
इंजीनियर? अच्छा।
हाँ, लेकिन 2004 से जापान में रह रहे हैं, टोक्यो में। तो इतने सालों में उन्होंने जापानी कल्चर को बहुत करीब से देखा है, जिया है।
तो उनको एक अंदरूनी समझ होगी वहां की।
बिल्कुल, और शायद उनका वो इंजीनियरिंग वाला दिमाग है ना, वो चीजों को थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से देखने में मदद करता होगा।
हो सकता है। और दूसरे लेखक?
वो है फ्रांसिस्क मिरालिस, ये भी स्पेन से ही है, और ये तो जाने माने लेखक, जर्नलिस्ट, म्यूजिशियन भी हैं।
अरे वाह, मल्टी टैलेंटेड।
हाँ, और उन्होंने साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल ग्रोथ, इन सब पर काफी लिखा है। उनकी खूबी है कि मुश्किल बातों को भी बड़े आसान और दिलचस्प तरीके से समझा देते हैं।
तो ये जोड़ी तो कमाल की बन गई, एक तरफ जापान का जमीनी अनुभव,
हाँ गार्सिया का,
और दूसरी तरफ मिरालिस की वो कहानी कहने की, विचारों को पिरोने की कला। ये सिर्फ थ्योरी वाली बात नहीं लगती फिर।
सही कहा, ये वैक्यू है, मतलब जिया हुआ अनुभव। उन्होंने सिर्फ पढ़ पढ़ कर नहीं लिखा, वो खुद गए ओकिनावा।
ओगिनी गांव है ना, शतायु लोगों का गांव।
हाँ, ओगिमी। वहां के बुजुर्गों से मिले, उनके साथ रहे, उनकी जिंदगी को समझा, उन्होंने देखा कि ये लोग अपना रोल कैसे निभा रहे हैं, उनके जीवन के गोल क्या हैं।
तो ये किताब उनके सीधे अनुभवों का निचोड़ है, ये बात इसे और भी खास बना देती है।
बिल्कुल।
तो फिर ये किताब आखिर है क्या, अगर आसान शब्दों में समझना चाहें?
आसान शब्दों में ये एक तरह की गाइड है जो हमें अपना इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य, उसे खोजने और फिर उसे जीने में मदद करती है।
मतलब जीने की वजह?
हाँ, जीने की वजह। लेखक मानते हैं कि हम सबके अंदर एक इकिगाई होती है, बस उसे पहचानना है और उसके हिसाब से जीना है, और यही उनके हिसाब से लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का रास्ता है। ये सिर्फ कोई नौकरी या हॉबी नहीं है, ये आपका असल रोल है।
अच्छा, वो एक चार सर्कल वाला डायग्राम भी है ना इसमें, वो काफी पॉपुलर हुआ था।
हाँ हाँ, वो चार वृत्त वाला चित्र।
हाँ,
वो समझाता है कि इकिगाई अक्सर इन चार चीजों के मिलने की जगह पर होती है।
क्या क्या है वो चार चीजें?
पहला, वो जो आपको करना पसंद है, मतलब आपका पैशन, आपका जुनून। दूसरा, वो जिसमें आप अच्छे हैं, आपकी स्किल, आपकी कुशलता।
ठीक है।
तीसरा, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, समाज के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है। और चौथा, वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी आपका प्रोफेशन, आपका पेशा।
जुनून, कुशलता, जरूरत और पेशा।
हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। किताब ये भी साफ करती है कि इकिगाई सिर्फ इन चारों का जोड़ नहीं है।
अच्छा,
उससे ज्यादा है।
हाँ, उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
ये वो एहसास है कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब है, कोई मकसद है, कोई गोल है।
समझ गया। तो ये कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है कि बस चार चीजें मिलाओ और इकिगाई मिल गई।
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब असल में ओकिनावा के लोगों की पूरी जीवन शैली को सामने रखती है, उनका सादा खाना, उनकी दिन भर की हल्की फुल्की कसरत,
हाँ,
उनके मजबूत सामाजिक रिश्ते, उनकी पॉजिटिव सोच। ये उस सोच को चैलेंज करती है कि भाई 60 के हो गए, अब रिटायरमेंट लो और आराम करो।
बल्कि ये कहती है कि एक्टिव रहो।
एक्टिव रहो, जिंदगी भर सक्रिय रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, अपना रोल निभाते रहना जरूरी है।
तो ये एक पूरा होलिस्टिक नजरिया हुआ, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है।
हाँ बिल्कुल, इसमें शरीर की सेहत भी है, मन की शांति भी है, जिसे किताब में फ्लो कहा गया है।
फ्लो, हाँ सुना है इसके बारे में।
लोगों से जुड़ाव भी है, वो मोआए यानी दोस्तों का ग्रुप, और एक उद्देश्य के साथ किसी काम में लगे रहना भी। ये पुरानी जापानी समझ और नई रिसर्च का एक तरह से मेल है।
और नतीजा क्या है इसका?
नतीजा ये कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करें, बल्कि जब आप एक उद्देश्य वाला जीवन जीते हैं, अपना गोल पहचानते हैं, तो खुशी अपने आप मिल जाती है, वो सफर का हिस्सा बन जाती है।
दिलचस्प। तो चलिए अब जरा किताब के कुछ खास हिस्सों, कुछ चैप्टर्स पर नजर डालते हैं, थोड़ा और गहरे उतरते हैं।
हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत होती है इकिगाई की पहचान से ही। लेखक बताते हैं कि कैसे वो टोक्यो में मिले, और फिर जापान के लिए उनका जो प्यार था वो उन्हें ओकिनावा के ओजिमी गांव ले गया।
वही शतायु लोगों का गांव।
हाँ, जहां 100 साल पार करना आम बात है। वहीं वो इस कॉन्सेप्ट से रूबरू होते हैं, इकिगाई यानी हमेशा व्यस्त रहने की खुशी।
लेकिन ये सिर्फ बिजी रहना नहीं है ना?
नहीं नहीं, मतलब के काम में लगे रहना। वो इसे विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी से भी जोड़ते हैं। फ्रैंकल कहते थे ना कि जीवन में अर्थ खोजना ही हमें जीने की ताकत देता है।
हाँ, मुश्किल हालात में भी।
बिल्कुल। तो इकिगाई भी यही है, एक मकसद होना, एक रोल होना, आपके तन और मन दोनों को जवान रखता है।
फिर सेहत की बात आती है, लंबी उम्र का राज सिर्फ अच्छी किस्मत तो नहीं हो सकती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब बताती है कि तनाव, स्ट्रेस कैसे हमारे शरीर पर बुरा असर डालता है, कॉर्टिसोल हार्मोन वगैरह। लेकिन मजेदार बात यह है कि किताब ये नहीं कहती कि तनाव से बचो।
अच्छा, तो फिर क्या?
वो कहती है कि तनाव को सही तरीके से मैनेज करो। कैसे? अपने उद्देश्य पे फोकस करके और सजग रह के, माइंडफुलनेस से, और छोटी छोटी आदतें, वो बहुत फर्क लाती हैं।
जैसे वो हरा हचीबू।
हाँ, हरा हचीबू मतलब पेट को सिर्फ 80% भरना। ये सिर्फ कम खाना नहीं है, ये एक सिंबल है, प्रतीक है, जरूरत से ज्यादा चीजों से बचना, जीवन में संयम रखना।
और खाने की बात चली है तो ओकिनावा का खान पान कैसा है?
बहुत ही सादा, ढेर सारी सब्जियां, खासकर शकरकंद, टोफू, साबुत अनाज, चीनी, नमक, प्रोसेस्ड फूड, मांस, ये सब बहुत कम।
और ग्रीन टी, वो भी पीते होंगे?
हाँ, ग्रीन टी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ये सब मिलकर शरीर को अंदर से ठीक रखते हैं, ताकि हम अपना रोल अच्छे से निभा सकें।
और एक्सरसाइज, क्या वो लोग जिम जाते हैं?
नहीं, वैसा कुछ नहीं, कोई घंटों पसीना बहाना नहीं, बल्कि दिन भर हल्की पुल्की एक्टिविटी, जैसे बागवानी करना, पैदल चलना, दोस्तों के साथ कोई उनका पारंपरिक नाच होता होगा वो करना,
फंक्शनल मूवमेंट जिसे कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, यहाँ तक के रेडियो टाइसो नाम का एक आसान सा जापानी वार्म अप है, वो भी रोज करते हैं। मकसद बस शरीर को चलाते रहना है।
और मन की शांति के लिए आपने फ्लो का जिक्र किया था।
हाँ, फ्लो, ये मनोवैज्ञानिक मिहाय चिक्सेंट मिहाय का कॉन्सेप्ट है। फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता।
जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए।
बिल्कुल, या कोई म्यूजिशियन रियाज करते हुए,
सब कुछ भूल जाता है।
लेखक कहते हैं कि जब हम अपनी इकिगाय से जुड़ा काम करते हैं ना, तो हमें अक्सर ये फ्लो महसूस होता है।
तो काम बोझ नहीं लगता।
हाँ, वो आनंद बन जाता है, ये अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए उस सफर का मजा लेने जैसा है।
और मानसिक मजबूती के लिए किताब में दो और जापानी आइडियाज है ना, वाबी साबी और इचिगो इचिए।
हाँ, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट हैं ये। वाबी साबी यानी चीजों की अपूर्णता में, उनके अधूरेपन में सुंदरता खोजना। हर चीज परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं।
ये दबाव कम करता है।
बिल्कुल। और इचिगो इचिए, इसका मतलब है हर पल अनोखा है, ये दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इसे पूरी तरह जियो, इसकी कद्र करो।
वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस।
हाँ, ये सोच हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। किताब में इसे एंटी फ्रेजिलिटी कहा है, मतलब झटकों से टूटना नहीं बल्कि और मजबूत होके निकलना।
और एक और बहुत जरूरी चीज आपने बताई थी, समुदाय, वो मोआई।
हाँ, मोआई ये शायद सबसे अहम चीजों में से एक है। ओकिनावा में ये रिवाज है, बचपन के दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है।
सिर्फ भावनात्मक रूप से
नहीं, भावनात्मक, सामाजिक और कभी कभी तो आर्थिक रूप से भी। ये पक्के दोस्त होते हैं, मुश्किल में सहारा, खुशी में साथी। आज की अकेली होती दुनिया में सोचिए ये कितना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, एक सोशल सपोर्ट सिस्टम।
ये आपको अपनी जगह, अपना रोल समझने में मदद करता है। किताब में ओगिमी के बुजुर्गों की कई कहानियां हैं। कोई 102 साल के कराटे मास्टर हैं।
अरे वाह।
कोई 90 साल की महिलाएं हैं जो आज भी अपने कम्युनिटी गार्डन की देखभाल करती हैं। ये सब अपनी इकिगाई जी रहे हैं।
कमाल है। तो आखिर में किताब इन सब बातों को कुछ नियमों में समेटती है।
हाँ, इकिगाई के 10 नियम, उनमें कुछ खास है। हमेशा सक्रिय रहो, रिटायर मत हो, धीरे चलो, जल्दबाजी मत करो,
हारा हाची बू।
हाँ, पेट पूरा मत भरो, अच्छे दोस्तों से घिरे रहो, हमेशा मुस्कुराओ, प्रकृति से जुड़ो, आभार व्यक्त करो, शुक्रगुजार रहो,
वर्तमान में जियो,
और सबसे जरूरी, अपनी इकिगाई को फॉलो करो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और उसे जियो।
तो कुल मिलाकर ये किताब हमें एक बैलेंस्ड, उद्देश्यपूर्ण और कनेक्टेड लाइफ का एक तरह से नक्शा देती है।
हाँ, और ये सिर्फ ओकिनावा के लोगों के बारे में नहीं है, ये उन प्रिंसिपल्स के बारे में है जिन्हें हम कहीं भी किसी भी उम्र में अपना सकते हैं।
तो अगर हम देखें इस किताब से कुछ मुख्य बातें, कुछ संदेश जो साफ उभरते हैं, पहला तो यही जो हम बार बार कह रहे हैं, मकसद ही जिंदगी का इंजन है।
हाँ बिल्कुल, इकिगाई सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है, ये वाकई लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी है। ये आपको सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह देता है, आपके रोल को परिभाषित करता है।
दूसरा, सेहत किसी एक चीज से नहीं आती, ये छोटी छोटी आदतों का मेल है।
है ना, सही कहा। ओकिनावा वाले दिखाते हैं कि सही खाना, हल्की कसरत, आराम, कम तनाव, अच्छे रिश्ते, ये सब मिलकर काम करते हैं। वो हरा हाचीबू जैसी छोटी आदत भी बड़ा असर डालती है। ये सब आपके जीवन के बड़े गोल यानी एक सार्थक जीवन को पाने में मदद करते हैं।
तीसरा जो मुझे बहुत अहम लगा, अकेले नहीं साथ मिलकर जीना, समुदाय की ताकत, वो मोआई।
हाँ, ओकिनावा में ये जीवन भर साथ निभाने वाले दोस्त उनके वेलनेस का आधार है। आज के समय में जहाँ अकेलापन इतना बढ़ रहा है, ये बात बहुत मायने रखती है। एक सपोर्ट सिस्टम आपको ताकत देता है, आपको अपनी सामाजिक भूमिका का एहसास कराता है।
अपने आप ही देखें तो भारत में भी परिवार और पड़ोस का जो महत्व रहा है वो इसी बात को तो दिखाता है।
बिल्कुल। चौथा, किसी काम में पूरी तरह डूब जाने का सुख, फ्लो। जब हम अपने पसंद के काम में खो जाते हैं तो हमें असली खुशी और संतुष्टि मिलती है।
हाँ, तब काम काम नहीं लगता।
हाँ, वो खुद को बेहतर बनाने का जरिया बन जाता है। ये अपने गोल की तरफ बढ़ने के प्रोसेस को एंजॉय करना सिखाता है।
और पांचवा, रिटायरमेंट का मतलब रुकना नहीं है बल्कि सक्रिय रहना है।
एग्जैक्टली। ओकिनावा के बुजुर्ग 90 या 100 साल के होकर भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, समुदाय में योगदान देते हैं। संदेश साफ है, उम्र चाहे जो भी हो, मेंटली, फिजिकली, सोशली एक्टिव रहना ही जवानी का राज है। आपका रोल बदल सकता है पर उसे निभाते रहना जरूरी है।
किताब में कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे वो ओकिनावा का फलसफा, हमेशा व्यस्त रहने की खुशी, खाली बैठने के बजाय किसी सार्थक काम में लगे रहना,
या फिर वो कहना केवल सक्रिय रहना ही आपको 100 साल जीने की इच्छा देगा।
हाँ, मतलब एक्टिविटी और जीने की इच्छा का एक पॉजिटिव साइकिल है। आप कुछ करते रहते हैं तो जीने का मन करता है और जीने की इच्छा आपको और एक्टिव बनाती है।
और वो दो जापानी कहावतें भी कमाल की हैं, हरा हची बू,
पेट 80% भरो। ये सिर्फ खाने में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में संयम सिखाती है।
और दूसरी,
इची गो इची ए, यानी ये पल अभी है, ये दोबारा नहीं आएगा, वर्तमान में जीना, हर लम्हे की कद्र करना।
ये तो बहुत जरूरी है आजकल की दुनिया में।
हाँ, और एक विचार जो मुझे लगता है पूरी किताब के सार को समेटता है, जिसे शायद जोसेफ एडिसन से जोड़ा जाता है, खुशी के लिए जीवन में 3 जरूरी चीजें हैं, करने के लिए कुछ, प्यार करने के लिए कोई, और आशा करने के लिए कुछ।
वाह, ये तो इकिगाई, आपका काम या रोल, समुदाय, आपके रिश्ते, और भविष्य की ओर देखना, आपका लक्ष्य या गोल, इन तीनों स्तंभों को खूबसूरती से जोड़ता है।
बिल्कुल।
तो अब असली सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा भी मिलती है, पर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए, अमल में कैसे लाएं?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। शुरुआत शायद खुद से कुछ सवाल पूछकर कर सकते हैं, जैसे मुझे सच में क्या करना पसंद है, मैं किस चीज में अच्छा अच्छी हूँ, क्या दुनिया को इसकी जरूरत है, क्या इससे गुजारा चल सकता है।
वो चार सर्कल वाले सवाल।
हाँ, जवाब शायद तुरंत ना मिले, पर ये सोचने की प्रक्रिया ही इकिगाई की तरफ पहला कदम हो सकती है। और फिर छोटी आदतें अपनाना,
जैसे
खाते वक्त थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा कम खाना, हारा हाचीबू, रोज थोड़ी देर टहलना या स्ट्रेचिंग करना, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, आभार व्यक्त करना।
और काम की जगह पर, प्रोफेशनल लाइफ में?
वहां भी कोशिश कर सकते हैं, अपने काम में फ्लो कैसे लाया जाए। शायद फोन को थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पर डालकर या किसी एक जरूरी काम पर पूरा ध्यान लगाकर,
बिना मल्टीटास्किंग के।
हाँ।
और रिटायरमेंट को लेकर उसे अंत समझने के बजाय एक नए अध्याय की शुरुआत समझें। पहले से सोचें कि रिटायर होने के बाद क्या करना चाहेंगे। कोई शौक पूरा करना, कोई सामाजिक काम, कुछ भी जो आपको व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण रखें। अपनी भूमिका को फिर से गढ़ना।
और सामाजिक जीवन में
अपने करीबी दोस्तों, अपने मुआए, उनके लिए वक्त निकालें, उनसे मिलें, बात करें, उनका हालचाल पूछें, अपने आस पड़ोस, अपनी कम्युनिटी से जुड़ें।
शायद कोई छोटा सा वॉलंटियरिंग का काम।
हाँ, या किसी लोकल क्लब या ग्रुप में शामिल होना। ये छोटे छोटे कदम हमें जुड़ाव महसूस कराते हैं और हमारी सामाजिक भूमिका को भी मजबूत करते हैं। मेरे लिए तो इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाएगी। ये कोई खजाना नहीं है।
हाँ, सही कहा।
एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है, एक रोजाना का अभ्यास है। ये अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों, काम, परिवार, सेहत, शौक, इनको एक साथ देखने और उनमें गहरा मतलब खोजने का नजरिया है। अपने रोल को समझने और उसे लगातार बेहतर बनाने की कोशिश है।
और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये सब सिद्धांत कितने आसान और सुलभ लगते हैं। लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई जादुई गोली नहीं चाहिए।
हाँ, बस छोटी लगातार अच्छी आदतें,
अपने मकसद के प्रति ईमानदारी और अपने लोगों से जुड़ाव। ये आज की जो हमेशा और ज्यादा की संस्कृति है ना, उसको एक शांत, संतोषजनक विकल्प देता है। ये याद दिलाता है कि हमारे गोल सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून और जुड़ाव भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है।
क्या
सवाल? ये है कि क्या आज की जो इतनी तेज रफ्तार वाली कॉम्पिटिटिव दुनिया है, जहाँ हर तरफ इतना दबाव है, क्या हम सच में इकिगाई के इन सिद्धांतों को पूरी तरह जी सकते हैं, या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना बनकर रह जाएगा जिसे हम कभी कभार याद कर लेते हैं?
सोचने वाली बात है।
हाँ, इस पर सोचना जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।